ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सभी आगे आ जाएं, पीछे जो बैठे हैं सभी आगे आ जाएं, पीछे से दिखाई नहीं देगा, सभी आगे आ जाएं, आगे बहुत सीट खाली है, प्लीज कम। बच्चे हैं, बच्चे आगे आ जाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आगे आ जाएं। उधर सीटें खाली हैं, इधर भी सीटें खाली हैं, बच्चे आगे आ जाएं। बीच में भी जो आगे आ जाए, आगे आ जाए, बीच वाले आगे आ जाए। ओके, तो कल का सेशन का आधा भाग हो चुका और आधा आज माइंड एंड मेमोरी मैनेजमेंट थ्रू राज होगा। कल आपने देखा कैसे माइंड और मेमोरी को मैनेज करने के लिए हमें माइंड का सीक्रेट जानना पड़ा, और माइंड का सीक्रेट है इमेज, कलर, म्यूजिक एंड आर्ट। ये चारों चीज हमेशा चाहिए माइंड को मैनेज करने के लिए, या मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, या मेमोरी को मैनेज करने के लिए। हम कोई भी चीज भूल जाते हैं। मेरी भी आदत थी कि जब स्कूटर लिया था तो स्कूटर लेके कहीं भी जाता था, चाबी उसमें भूल जाता था। जब बाद में वहां जाके चाबी ढूंढता था, चाबी नहीं होता था, फिर भाग करके आता था, देखता था। भगवान की कृपा होती थी कि किसी का नजर चाबी के ऊपर नहीं जाता था। ये मेरे साथ 4-5 बार हुआ, लेकिन ये डेंजरस था। एक वैसे ही स्कूटर चोरी हो जाती है, और चाबी लगा हुआ हो तो काम और इजी हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ने हमें मौका दिया और उस समय हमने माइंड प्रोग्रामिंग किया। कैसे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है? इमेज के थ्रू ही होती है। कोई भी चीज हम क्यों भूल जाते हैं? डे टू डे फॉरगेटफुलनेस। चाबी कहीं रखा और भूल गए, कहीं पे कोई सामान रखा भूल गए। तो जब भूलने की, हम भूलते नहीं हैं, हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मैंने चाबी को कैसे ठीक किया। मैंने मेंटली उस समय मेंटली इमेजिन किया, अपने मेंटल स्क्रीन पे पिक्चर बनाया कि जैसे मैं स्कूटर को स्टॉप कर रहा हूं, उसी समय मैं राइट हैंड से अनलॉक कर रहा हूं, और अनलॉक करके चाबी को लेफ्ट हैंड में रख के बाई पॉकेट में रख रहा हूं। ये पूरा पिक्चर बनाया, और इस पिक्चर को उसी समय 21 टाइम्स मेंटली प्ले किया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आया, धीरे धीरे पिक्चर स्पष्ट होता गया, और फिर 15 बार के बाद में वो पिक्चर बिल्कुल कलर हो गया। इसके बाद वो हमारे मेमोरी में वो डाटा, वो इमेज स्टोर हो गया। इसके बाद कभी भी कहीं भी मैं स्कूटर खड़ा, ऑटोमेटिकली हाथ राइट हैंड से अनलॉक हो जाता, चाबी ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड में, और ऑटोमेटिकली। तो ये मेमोरी की प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कोई टाइपिंग सीखता है, बार 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 टाइप करता है, उसका इंप्रेशन मेमोरी में चला जाता है, और जब वो टाइपिंग सीख जाता है, पूरा सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है, तो बाद में जब भी उसको टाइपिंग करना होता है तो मेमोरी से वो सॉफ्टवेयर खुल के उसके उंगलियों को ऑटोमेटिकली चलाता है। यही कारण है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मैक्सिमम हम सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। वो सबकॉन्शियस नहीं है, वो मेमोरी है। इसलिए मेमोरी एंड माइंड दोनों का ताल्लुक है। मेमोरी से जो इंफॉर्मेशन हमारे मेंटल स्क्रीन पे आता है, उसी को माइंड कहते हैं। माइंड इज नथिंग, माइंड इज अ डाटा, और कुछ भी नहीं है। लेकिन माइंड में डाटा कहां से आती है? मेमोरी से। और मेमोरी से माइंड में जो डाटा आएगी, उसी का तो प्रिंट आउट निकलेगा, उसी का तो एक्शन होगा। इसलिए जो हमारे मेमोरी में है, ऑटोमेटिकली उसका प्रिंट आउट निकलता रहता है। ड्रीम में भी निकलता है। जो आदतें हम डेली करते हैं, वो ड्रीम में भी अगर वो रील चल गया तो एक्शन हो जाता है। जैसे एक व्यापारी था, दिन भर कपड़े काटता रहता था, सपने में भी वो देखा कि मैं वही इमेज, दुकान का कस्टमर आया, और वो कस्टमर को कैंची से काट करके कपड़े बेच रहा है, कैंची से आधा काटा और ऐसे किया, नई चादर ओढ़ के सोया था और नई चादर फाड़ दिया। तो वो एक्शन ड्रीम में भी हो जाता है, आप देखें कई कई एक्शन ड्रीम में हमारे ऐसे होते हैं। कोई ड्रीम में वॉक करता है, जब वॉक करता है तो उसके आंखों से दिखाई नहीं देता कुछ भी। तो इट इज लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन को सही करना है। मैं गुवाहाटी में प्रोग्राम कर रहा था तो एक मेरे पास बूढ़े से व्यक्ति करीब 72 के आसपास वो आए मेरे पास, बोले कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, सेक्रेटरी लेवल पे मैं काम किया, लेकिन आज मैं मेरी मेमोरी बहुत वीक है। जब मैं सेक्रेटरी था मुझे एक एक फाइल याद रहता था, एक एक का कमेंट याद रहता था, और मैं उस समय मेमोरी एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज मैं खुद ही भूल जाता हूं कि मैं कौन सी सामान कहां रखता हूं। मैंने उनसे पूछा आप स्पेशली क्या भूलते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पैसे भूल जाता हूं कि मैंने पैसे कहां रखता हूं। मैंने पूछा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी, पैसे तो जनरली लोग भूलते नहीं लेकिन आप पैसे ही भूल जाते हैं, पैसे कहां रखते हैं। उन्होंने कहा पैसे मैं नोटबुक में, कभी डायरी में, कभी किताबों में छिपा देता हूं। मैंने पूछा आप क्यों छिपाते हो आप, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शराबी हो गया है, उसके जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो मेरे पैसे ढूंढता है और पॉकेट से निकाल लेता है, इसलिए मैंने नोटबुक में छिपाना शुरू किया। लेकिन मैं खुद ही भूल जाता हूं कि मैं कहां छिपाया। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप पैसे छिपाते हैं उस समय आप माइंड में क्या सोचते हैं, माइंड में क्या कमांड देते हैं, क्या माइंड अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं। माइंड में यही कमांड देते हैं ना कि किसी को दिखना नहीं चाहिए कि मैं पैसा कहां छिपा रहा हूं, यही कमांड देगा कोई भी। जैसे माइंड में वो कमांड देंगे और कंप्यूटर में उसको इंटर करेंगे, आपके मोटर ऑर्गन को ऑर्डर मिलेगा, एक गर्दन को ऑर्डर मिलेगा कि आप हिलो, और आंख को ऑर्डर मिलेगा कि आप पूरा स्कैन करो, कोई देख तो नहीं रहा है, पूरा नजरे इधर उधर जाएगी, पूरा आपको पूरा गर्दन को कमांड मिलेगा और आंख पूरा सारा स्कैन करेगा, कोई एरिया में तो कोई नहीं है, देख तो नहीं रहा है, और आंख ऐसे हिलता रहेगा, और जब इंश्योर हो जाएगा कि हाँ कोई नहीं देख रहा है तो ऑर्डर मिलेगा कंप्यूटर को, हाँ अभी सेफ है, कोई नहीं देख रहा है। फिर हाथ को ऑर्डर मिलेगा पैसा छिपा दो, तो इधर उधर देखते हुए ही पैसा छिपा दे। मेमोरी में क्या रजिस्टर होगा, किसी ने नहीं देखा, बिल्कुल किसी ने नहीं देखा। फिर जब उनको रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने पैसा कहां छिपाई, तो मेमोरी से क्या निकलेगा, किसी ने भी नहीं देखा, वो भी तो नहीं देखे है ना, क्योंकि जब वो पैसा छिपा रहे थे उस समय उनकी नजरें कहां थी, चारों तरफ इसी में बिजी थी कि कोई देख तो नहीं रहा। उन्होंने उस समय वो ऑर्डर नहीं किया कि तू भी तो ऑब्जर्व कर, क्योंकि तुम्हें तो निकालना है और किसी ने देखे ना देखे, आपको तो देखना चाहिए। तो उन्होंने एक कमांड नहीं दिया, रॉन्ग कमांड दिया, यानी मेमोरी को ठीक से मैनेज नहीं किया। मैनेज नहीं किया तो क्या आता है कि हमें भूलने की आदत हो गई, हम जैसे जैसे बूढ़े होते वैसे भूलने जाते। जब सेक्रेटरी लेवल पे थे वो क्या कमांड देते थे हमेशा कि मुझे अच्छा रिपोर्ट लेना है, हमें हमारा एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं बॉस की नजरों में हमेशा अच्छा होना चाहिए, वो मेरे से पूछे मैं तुरंत जवाब देना चाहिए। तो उनका सारा कंसंट्रेशन किस पे था, इस रिपुटेशन पे था, इसलिए उनको सारा चीज याद था। तो हम कोई भी चीज भूलते नहीं है, भूलते कब है, जब हम ऑब्जर्व ठीक से नहीं करते हैं। एक व्यक्ति था वो चाय पी रहा था बाई हाथ से, राइट हैंड में चाबी था उसके ऑफिस का, ऑफिस जाने के लिए तैयार था, तभी बॉस का फोन आता है और उसका मोबाइल उसकी वाइफ उठाती है, जैसे बॉस का नाम सुनती है इनको बोलती है बॉस का फोन। अब चाय पी रहे हैं, चाबी उन्होंने रखा और फोन से बात करने लगे, फोन से बात किया, ऑर्डर मिला, रश अप टू ऑफिस इमीडिएटली, इमीडिएटली सुन के आधा कप चाय भी छोड़ा, सीधे कार का चाबी उठाया और चल दिए। वहां पर पहुंच गए, बॉस के सामने हाजिर, बॉस बोलता है और डॉक्यूमेंट्स फटाफट निकालो। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए चाबी ढूंढ रहे हैं, चाबी नहीं, चाबी उनकी कहां छूट गई, घर पे ही छूट गई। अब इसमें उन्होंने मेमोरी को ढंग से मैनेज नहीं किया, जब वो चाय पी रहे थे, उनको कहा गया कि बॉस का फोन आया, तो उनका सारा अटेंशन कहां चला गया? बॉस के फोन के ऊपर। राइट हैंड से क्या एक्शन हुआ चाबी रखने का, वो उनका कंप्यूटर ने रिसीव नहीं किया। जब रिसीव नहीं किया तो क्या होगा? रिकॉल नहीं होगा। वहां जाकर के वो फिर क्या करेंगे? रिप्ले करेंगे कि कैसे कैसे हुआ, और रिप्ले करेंगे कहां हमारी चाबी छूट सकती है, कहीं कार में तो नहीं गिरी, कहीं रास्ते में तो नहीं गिरी। फिर वो अंदर पूरा रिकॉल करेंगे, प्ले बैक करेंगे, तब उनको ध्यान आएगा कि कहीं मैं चाय पीते समय तो चाबी नहीं रखा, हो सकता है घर पे हो, तब उनको याद आएगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट में मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, लैक ऑफ इमेजिनेशन एंड लैक ऑफ कलरफुल विजुअलाइजेशन। जैसे आपका इमेज खुद ब्लैक एंड व्हाइट विजुअलाइज हो रहा था, कलरफुल विजुअलाइज नहीं हो रहा था, इमेजिनेशन ठीक से नहीं हो रहा था, कलर का स्पीड आपने चेक किया, कलर का स्पीड कितना कम है आपका, और पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। तो इसी कारण डे टू डे फॉरगेटफुलनेस की बीमारी होती है। इसलिए मेमोरी को मैनेज करने के लिए हमारा राइट हैंड क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड में अगर चीज है उसको हम अगर रिप्लेस करते हैं तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। कई लोग दूध चूल्हे पर छोड़ के चले जाते हैं, फोन आया, दूध चूल्हे पर छोड़ दिया, अब जैसे फोन आया उनका सारा कंसंट्रेशन फोन पर चला जाता है, उनको ये उस समय क्या करना पड़ेगा, उस समय ध्यान देना पड़ेगा कि फोन में कितना टाइम लग सकता है, दूध उबलने में कितना टाइम है, उन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। अगर फोन अटेंड करने में 5 मिनट लगता है और 2 मिनट के अंदर दूध को उबाल आना है तो हम दूध को बिल्कुल कम करके जा सकते हैं, सिम पे रख के जा सकते हैं, लेकिन हम जल्दी से जाते हैं और 5 मिनट के बजाय 10 मिनट बात करते हैं और भूल जाते हैं कि हमने दूध भी रखा है। तो हमारा लाइफ स्टाइल में जल्दी 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 के चक्कर में लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। मेमोरी किसी की कम नहीं होती है, हर एक की मेमोरी अच्छी होती है। हम आप दादी को देखो, कल दादी साहब ने मिला ना, 93 इयर्स की है, कितनी अच्छी मेमोरी है, कितनी जग की हिस्ट्री की बातें याद करके सुना रही थी। मेमोरी किसी की भी खराब नहीं होती, मेमोरी खराब होती है किसकी? पागलों की, क्योंकि उनका कंप्यूटर हाई वोल्टेज में चला जाता है, डिफॉल्ट के कारण मैक्सिमम फोल्डर्स खुलते रहते हैं, जब चाहे वो वैसे ही प्रिंट आउट उनका मुख से निकलता रहता है। तो मेमोरी को माइंड मैनेज करने के लिए आपको इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी है माइंड को मैनेज करना, क्योंकि मेमोरी में पूरा भी माइंड के थ्रू ही होती है। कोई भी चीज डाटा जाएगी कहां आएगी? सबसे पहले मन में ही तो आएगी ना। कंप्यूटर में कोई भी चीज टाइप करेंगे सेव करने के लिए तो कहां जाएगा? सबसे पहले मॉनिटर पे ही तो आएगा, आएगी नहीं आएगा? तो माइंड को मैनेज करना पड़ेगा, और माइंड को ही मैनेज करने के लिए यही चीज चाहिए, और माइंड को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी बात है राजयोग। राजयोग भी क्या है? राजयोग हमारा है मन और बुद्धि दोनों का सामंजस्य। बुद्धि क्या है? बुद्धि दिमाग है। दिमाग क्या है? अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम और माइंड का दोनों का मैच नहीं होगा तब तो प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं होगी। जैसे आज भी कंप्यूटर में कई सिस्टम, कई सॉफ्टवेयर ऐसे बनते हैं जो विस्टा में ही चलेंगे, विंडो 2000 है तो उसमें नहीं चलेंगे, तो डिफरेंस हो गया ना। तो उस तरह हम लोगों के कंप्यूटर को अपडेट करना पड़ेगा। तो माइंड इज ऑलवेज ओवर मैटर, माइंड ही बेसिक फंडामेंटल है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। तो कल हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे कहीं को माइंड ओवर मैटर का, सोल ओवर माइंड एंड माइंड ओवर मैटर। सोल, सोल मतलब आत्मा, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। हम बात भी करते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस की हिंदी क्या होता है? आत्मविश्वास। परमात्म विश्वास तो नहीं होता ना, आत्मविश्वास होता है। और सेल्फ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल्फ? स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। सेल्फ का फुल फॉर्म होता है स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। वी आर ऑल स्पिरिचुअल एनर्जी, और हमारा फॉर्म कैसा है? लाइट जैसा है, प्रकाश जैसा है, हमारा स्वरूप प्रकाश जैसा है। इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें क्या होता है, बॉडी में कॉन्फिडेंस आता है, बॉडी में मेरा बॉडी बिल्डिंग है ना, मैं यूथ हूं, मेरे में इतनी ताकत है, तो ये बॉडी कॉन्फिडेंस हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। बॉडी में कितनी भी ताकत हो लेकिन सेल्फ में कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि मैं एक इमोर्टल सोल हूं, मैं एक हाईली सोर्स एनर्जी हूं, तब तक वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कहा जाता है। सोल इज ऑलवेज ओवर माइंड। माइंड को कौन कंट्रोल करता है? सोल करती है। और मैटर को कौन कंट्रोल करता है? माइंड करती है। लेकिन अभी रिवर्स गियर में चल रहा है, मैटर माइंड को कंट्रोल कर रही है और मन आत्मा को कंट्रोल कर रही है, और मन आत्मा को घसीट करके ले जा रही है। अगर हम कंपेयर करें कि मन एक घोड़ा है तो आत्मा उसके ऊपर घुड़सवार है और मैटर उसका घोड़े का खाद्य पदार्थ है, तो घोड़े को खाने की आदत हो गई है, तो जैसा उसका इंटरेस्ट का फूड मिलता है वहां वो घोड़ा भागता है, और आत्मा उसके पीठ, आत्मा घुड़सवार है उसके पीठ पे बैठी है और उतना तेज भागता है घोड़ा कि आत्मा गिर जाती है। वो कंट्रोल करना चाहती है घोड़े को, नहीं कंट्रोल करना कर पाती है। इसलिए आत्मा कहती है मन ने मुझे धोखा दिया। मन बार बार धोखा देता है, बार बार गिरा देता है, आप गिर जाते हैं, चोट लगती है, दुख होता है, तकलीफ होता है, मन से परेशान हो जाते, बोलते मन मुझे परेशान कर रहा है। मन क्यों परेशान कर रहा है? कि मन मैटर के पीछे भाग रहा है, मैटर द्वारा गाइड हो रहा है, और आत्मा परेशान इसलिए हो रही है कि माइंड को कंट्रोल कर नहीं रही है। तो राजयोग इस पूरे रिवर्स प्रोसेस को सही कर देती है। तो कैसे सही होगा उसका कल मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था, माइंड ओवर मैटर, पानी के द्वारा चार्ज किया था, है ना। कल एक जनाब आए थे जो गिरा रहे थे बच्चों को, आए हैं क्या? आए हैं? वो चले गए, मुझे विचार था उनको ही थोड़ा, नहीं वन इज यार, नहीं वो तो है, लेकिन मुझे उनको चाहिए था, उनको गिराना था मुझे आज उनको बताना था कि माइंड ओवर मैटर क्या चीज होता है, क्योंकि वो उनका इंटेंशन रॉन्ग था, है ना। क्योंकि नियम होता है, ग्रेविटेशन, हम जब नीचे झुकते हैं तो हमारा ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण से नजदीक हो जाता है, जब भी आप नीचे झुकेंगे तो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जब भी किसी को ऐसे तिरछा खींचेंगे आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आप जैसे कांटा होता है, कांटा पर कोई चीज वजन देते हैं तो सीधे देते हैं ना, परपेंडिकुलर, तो हर चीज का नियम होता है। तो हर चीज के नियम के हिसाब से हम काम करेंगे तो यू फील द एनर्जी। कल बच्चा चार्ज हुआ था कि नहीं, आप बच्चे से पूछिए उसको एनर्जी मिली थी कि नहीं मिली थी, ठीक है। आज भी अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आ सकता है, कोई भी दो व्यक्ति आ सकते हैं, कोई भी छोटे बच्चा ज्यादा रहेगा, आ जाइए आप आ सकते हैं। आप तो कल आए थे ना, दूसरा कोई, दूसरा बच्चा, नहीं दूसरा बच्चा, अच्छा आप ही आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, नहीं आप रहने दो, ये छोटा बच्चा आ गया, अच्छा आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, ओके। आप तीन आदमी हैं, ठीक है, हमारे पास तीन ग्लास पानी है, ठीक है, तीन ग्लास ही पानी है। तीन ही ग्लास पानी है बेटे, ठीक है, है ना, आधा से नहीं होगा, ठीक है। चलो एक को हम इससे चार्ज करते हैं, इस प्लेट से, इसको कंसेंट्रेशन प्लेट करते हैं, ठीक है। आप इसको ऊपर कंसंट्रेट करेंगे पूरा और देखिए क्या क्या दिखाई देता है, ऊपर नीचे पूरा पूरा दिखाई देते, ऐसे करके देखना पड़ेगा। इसमें पहले नियम पढ़िए क्या लिखा है, ऐसे देखना है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप ऐसे करो बेटे, ऐसे करो, ऐसे पैर मिलाओ, आप भी पैर मिलाइए, आप भी पैर मिलाइए। ओके ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है सीधा खड़े एकदम सीधा। तो मैं जब भी इसको ताकत लगाऊंगा इसको नीचे ही झुकाऊंगा, ऐसे ऐसे झुक रहे हैं ना, ठीक है एकदम सीधा लगाऊंगा इसको, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा तो कोई भी गिर जाएगा, ऐसे करूंगा तुरंत गिर जाएगा। वो कल क्या कर रहे थे, ऐसे गिरा रहे थे है ना, तो इसको ऐसे ताकत लगा रहा हूं। आप देखिए झुक रहा है ना बच्चा, झुक रहा है ना। इन भाई साहब को भी मैं है ना, मैं परपेंडिकुलर ताकत लगा रहा हूं ना, देख रहे हैं ना, ये देख गिर रहे हैं, झुक रहे हैं ना, झुक रहे हैं ना। आप पीछे करके एक बार देखिए, पीछे से भी पूरा पैर मिलाइए, पीछे से भी मैं ताकत लगाऊंगा तो ऐसे ही करूंगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं, झुक रहे कि नहीं झुक रहे हैं, बिल्कुल इंबैलेंस है ना, इंबैलेंस है ना भाई साहब। अभी मत बोलना कि मैं पूरा ताकत नहीं लगाया, ठीक है गिर रहे ना कि नहीं, आपने पूरा ताकत लगाया ना, लगाया ना, झुक रहे ना। ओके आप देखें पैर मिला बेटे, ओके ये तो छोटा सा ही है ना, ये है ना, ये तो इस समय में ताकत ही नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये तीन ग्लास पानी है, ये तीनों पियेंगे, ठीक है ले बेटे, पी जाओ पूरा, पी जाओगे ना, पी जाओ। पूरा पी जाओ। मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा, आप बताऊंगा, बताऊंगा बिल्कुल बताऊंगा, आज इसीलिए तो बुलाया हूं आज, आज अच्छा अच्छा आज अच्छा टाइम देंगे आपको। बिल्कुल आपको क्या दिखाई दिया इसमें कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, नहीं इसके अंदर कोई इमेज है वो नहीं दिखाई, स्टार कीजिए है ना, आपको इस प्लेट से चार्ज करना है, ठीक है आपको चार्जिंग देखा है ना, तो कंसेप्टेट कीजिए, आपको हम देखते हैं, देखते हैं आपका, आप ऐसे कीजिए तो पूरा पैर मिलाइए पूरा, देखिए हिल रहा है ना,
आगे की तरफ जा रहा है,
हाँ आगे की तरफ जा रहा है ना, थोड़ा सा भी ताकत लगाने पर आगे आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखिए थोड़ा सा लाइट के ऊपर ना, इधर आगे आ जाए, इधर लाइट आ रहा है, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, अब चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए, इसके बाद दो मिनट तक फोकस कीजिएगा, ठीक है। अभी इन लोगों को हम चेक करते हैं, पैर पैर लगाओ, हाँ और हाथ हाथ लगाओ, देख रहे ताकत आया आया, दो हाथ से लगाते हैं ताकत पूरा पूरा पकड़ो आप देख हाँ चेक के लिए एकदम नीचे की तरफ करना है आप हाँ और आगे आ जाइए हाँ ठीक है
शर्मा जी कुछ
आप देखिए चेक कर लीजिए
इसके साथ तक कर रहे
हैं
ठीक है
टाइम मिला बेटे अब देखिए
पीछे देखिए
हाँ हाँ चेक कीजिए बिल्कुल चेक कीजिए सेटिस्फाई कीजिए अपने आपको देखिए
90 के कोण
एकदम 90 के कोण पे लगाना
है
देखिए देखिए आप लगा के देखिए ठीक है अभी अभी शर्मा जी का अगर ताकत तुरंत रिलीज हो गया कैसे जैसे ही ये मोबाइल है जैसे ही ये मोबाइल के कांटेक्ट में आएंगे है ना जैसे ही आपको कॉल आता है ना बोलते हैं मिस कॉल बोलते हैं ना मिस कॉल आता है तो क्या बोलते हैं रॉन्ग नंबर ही बोलते हैं मान लो शर्मा जी को मिस कॉल आया आप क्या बोलेंगे इस पे रॉन्ग नंबर बस ये रॉन्ग नंबर बोलते ही इससे ये नहीं कि रॉन्ग नंबर मतलब थोड़ी देर भी आप कान में लगाएंगे तो खत्म है अभी ये चेक कीजिए आप खत्म चार्ज खत्म हो गया कि नहीं हो गया आप चेक कर लीजिए पूरा पैर लगाइए गया कि नहीं पावर थोड़ा डिस्चार्ज लेकिन ये दोनों बच्चे चार्ज है हमारे कहने का मतलब है कि कभी भी है ना थैंक यू कहां से आए बेटे
रेवाड़ी
रेवाड़ी आप कहां से आए बेटे रोहतक से आप
जींद
से वेरी गुड चलिए आपको आपको कैसा फील हुआ
बहुत अच्छा फील हुआ सर
मतलब फील हुआ कि नहीं
बिल्कुल
अभी बैठिए अभी आप सभी चार्ज होंगे ये तो स्टेज पे बुला के दिखाया हम ऐसा मेथड बताएंगे कि यहां पे जितने हॉल में बैठे हुए ना सारे के सारे चार्ज हो जाएंगे यहां से बैठे बैठे ठीक है हाँ मोबाइल तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा यस मोबाइल स्विच ऑफ है क्योंकि आप देखिए अगर आप प्रधानमंत्री से बात करने जाते हैं तो क्या मोबाइल ऑन करके जाएंगे मोबाइल ऑफ करके जाएंगे गलती से भी नहीं सोचेंगे वाइब्रेटर में भी रखूं तो यहां पर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो प्रधानमंत्री का भी प्रधानमंत्री है ना भगवान उससे बातचीत होती है आपको ठीक है तो थोड़ा तो आपको केयर लेना पड़ेगा लेंगे तो सभी ऑफ कर दीजिए जितने जिसके पास भी मोबाइल है सभी ऑफ कर दीजिए किसी का भी मोबाइल गलती से भी नहीं बजना चाहिए फिर देखिए कैसे चार्ज हो जाता है पूरा हॉल ठीक है अभी दिखाई दिया आपको दिखाई नहीं दिया अभी तक नहीं एक सेकंड में आ जाता है
सर जी
हाँ
साढ़े दस के बारे में मशीन दिखाएंगे एक बार चेक नहीं
ओके
साढ़े दस की बस
ठीक ओके रख दीजिए रख दीजिए आपको तो दिखाई नहीं दिया कोई बात नहीं आप जाइए आपको वहां से बैठे बैठे चार्ज करेंगे आप जाइए हाँ चेक कर लेंगे बिल्कुल चेक कर लेंगे आप देखिए हाथ लगाइए यहाँ पे पहले हाथ को पोंछ लीजिए यहाँ पे हाँ अब यहाँ पे लगाइए ये दो ठीक है आपका 46 है ठीक है 50 से कम है आपका भी ठीक है 43 है बेटे लगाओ है ना इसको पूछो पूछो हाथ को पूरा साफ करो ठीक है आपका ठीक है बेटे 12 साल से कम बच्चों का इसका 58 है इसका पूरा बॉर्डर लाइन पे है 60 ठीक है छोटे बच्चों का 60 होना चाहिए 12 साल से कम और 12 साल से जो आए उनका 50 से कम होना चाहिए ठीक है बैठिए ओके तो माइंड इज ऑलवेज ओवर मैटर आपने देखा कि कैसे हमारा सोर्स से कनेक्शन होता है और कॉस्मिक एनर्जी पानी में आती है और जो पानी पिएगा वो चार्ज हो जाएगा इसीलिए यहां पे भगवान कहते हैं भगवान को भोग लगा के खाओ कोई भी खाना को यहां भोग लगा के खाया जाता है जब भोग लगाने का मतलब क्या हुआ उसमें कॉस्मिक एनर्जी को डालना इसलिए वो प्रसाद बन जाता है ओके अभी इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कहां हुआ था आपको? बहुत पहले ही इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, और डॉक्टर मैसारो इमोटो जापानी साइंटिस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के पानी के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और देखा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे डिक्रिस्टलाइज से क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, पूरा रंगोली बन जाता है जब दृष्टि देते हैं ना इस पानी में, तो पानी के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल रंगोली जैसा हो जाते हैं। और ये क्रिस्टलाइज वाटर जब आपके ब्लड में मिक्स होता है तो पूरे ब्लड के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और जब ब्लड मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो आपका पूरा बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाता है, पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ हो जाता है। इससे कहते हैं एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। ठीक है, आप देखिए कितना क्रिस्टलाइज। और उस वाटर को जब बोतल में चार्ज करके दिन में रख दे और उस बोतल के ऊपर लेवल लगा दे थैंक यू गॉड, तो थैंक यू गॉड का लेवल लगा देने से हमेशा वो पानी क्रिस्टल बना रहता है। आप देखिए ऐसा, और उस पानी पीने से आपका मिनरल वाटर से भी ताकत उसमें आएगा। मिनरल वाटर तो कुछ भी नहीं इसके आगे। और माइंड के द्वारा पावर रेडिएट करने से बीमारी भी ठीक हो जाती है। आप देखिए दादी 93 इयर्स के एज में भी सी इज द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, वुमेन ऑफ परफेक्ट रिदम, फर्स्ट डेल्टा वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, और योग निद्रा, निद्रा योग को इन्होंने योग निद्रा में कन्वर्ट कर दिया। और आज मातेश्वरी जिनका आज पुण्यतिथि है, इनके बारे में भी आपने सुना, उस समय कैंसर का इलाज नहीं था 1964 में, फिर भी उन्होंने कैसे इस मैटर बॉडी के ऊपर उन्होंने माइंड के द्वारा काबू पाया, और अंत तक भी उनके चेहरे पे बीमारी का सिकन नहीं था, लोगों को पता तक नहीं चला। आज किसी को बुखार हो जाए तो हाय 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 करके बेड पे पड़े रहेंगे। हमारी दादी प्रकाशमणि दादी जी को देखिए, कितना भी ट्रीटमेंट हुआ कुछ भी हुआ लेकिन एक चू शब्द, हाय शब्द उनके मुख से नहीं निकला, और कंप्लीटली वो बॉडी से बॉडीलेस फील करते थे। शरीर को डॉक्टर ट्रीट करते हैं, अंदर आत्मा हील करती है उसको डिवाइन वर्चुस से, और परमात्मा उसको क्योर करते हैं। इसीलिए एक स्लोगन भगवान ने हमें से बनाया, विजिबल डॉक्टर ट्रीट्स द बॉडी विथ मेडिसिन, इनविजिबल डॉक्टर इनसाइड हील्स द बॉडी विथ डिवाइन वर्चुस, एंड सुप्रीम डॉक्टर क्योर्स द बॉडी एंड माइंड विथ हिज कॉस्मिक गॉडली रेज। ये तीनों डॉक्टर अगर इकट्ठा से काम करें तो गारंटी है कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। आज देखिए हमारी दादी गुलजार, इनको भी 93 में कैंसर हुआ था लेकिन आज ठीक है। तो ये राजयोग का इफेक्ट है। आप देखिए, एक मैं जनरली एग्जांपल दिखाता हूं लैंस आर्मस्ट्रांग का, विल पावर, माइंड पावर, माइंड पावर से उन्होंने भी कैंसर को हील किया। आप देखिए,
लैंस नेशनल चैंपियन रहे, वर्ल्ड चैंपियन रहे, वो टूर में रहे और सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच गए। सारी दुनिया के लोग सोच रहे थे कि बीमारी के समय उसके बचने की संभावनाएं महज 30-40% ही हैं। लैंस विश्व स्तर का एथलीट रहा था। समय समय पर उसने दर्द, खिंचाव और चोटों को सहन कर जाने वाला था। कुल मिलाकर इलाज उसको जर्जर बना देने वाला था। अगर उस समय कोई मुझसे पूछता कि क्या लैंस बच पाएगा, दूसरा क्या वो साइकिल रेस कर पाएगा, और तीसरा टूर डे फ्रांस में जा सकेगा, तो इनमें से एक भी सवाल का जवाब मैं हां में नहीं देता, क्योंकि स्थितियां उसके पक्ष में जरा भी नहीं थीं, उसकी उम्मीदें कम थीं।
उसने जो सबसे पहली बात मुझसे कही वो ये थी कि मैं इस रोग को हर हाल में हरा दूंगा।
देखा आपने कैसे उन्होंने कहा कि मैं इस रोग को हर हाल में हरा दूंगा। कौन हराएगा? आत्मा शरीर में होने वाले रोग को आत्मिक शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से हरा देगी। मेरे साथ भी ऐसे ही घटना हुई। ये टेलीग्राम देखिए, ये टेलीग्राम जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, एयरफोर्स में था, पूना हॉस्पिटल में भर्ती था, उस समय डॉक्टरों ने मेरे घर पे मेरे वाइफ के नाम से टेलीग्राम भेजा कि हमें डेंजरसली इल लिस्ट में प्लेस कर दिया गया है, बचने की संभावना बहुत ही कम है। उस समय मेरा ऐसा फोटोग्राफ था, आप देख लीजिए, मेरा फोटोग्राफ था जब कीमोथेरेपी चल रहा था, डॉक्टर विजिबल डॉक्टर हमारे इस बॉडी की ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये फोटो और आपके फोटो में जमीन आसमान का फर्क है। तो कैसे ठीक किया आपने आपको? उसी समय भगवान ने मुझे ये नियम सिखाया, ये मेथोडोलॉजी बताई। आप बोलते हैं पानी कैसे चार्ज होता है, आप जानना चाहते हैं। अगर पानी आपको चार्ज करने के सीखना है तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है आपका मेंटल प्योरिटी। आपके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, वैमनस ये नहीं आना चाहिए। एंगर नहीं आना चाहिए, फियर नहीं आना चाहिए। एंगर, फियर, इन सबसे जब आपका माइंड अलग होगा तब आपके माइंड में पावर आएगी। और ये पानी तो क्या, ये कितने लोग भी बैठे हों आपके सभा में, सबको चार्ज कर सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करके। तो इसके लिए कंडीशन है। इसीलिए राजयोग का अभ्यास ईश्वरीय नियम और मर्यादा के साथ करने से ताकत आएगी। कहीं भी ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन हुआ वो ताकत खत्म हो जाएगी। ये विधि से सिद्धि है, ये रिद्धि सिद्धि नहीं है, ये परमात्म सिद्धि है। लेकिन अब चूंकि आपका मन अनकंट्रोल्ड है, उसके लिए भी सहज ही आप कर सके, उसी के लिए हमने एक प्लेट, अभी ये प्लेट बनाया, दो कलर की प्लेट है और इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया स्पेशली, तभी हमने बनवाया। इसमें आपको नॉर्मल 2D पिक्चर लगेंगे लेकिन इसके अंदर एक 3D इमेज है। जब भी अपने माइंड को 3D इमेज पे आप कंट्रोल करेंगे तो इसके अंदर आपको रेड और पिंक, रेड और ऑरेंज कलर दिखाई देगा, उससे रिलेटेड इमेजेस दिखाई देगी। और उसके ऊपर कंसंट्रेट, अगर इस प्लेट के ऊपर दिन भर में जितना आपका उम्र है उतना मिनट कंसंट्रेट करते हैं, चाहे ब्रेक करके, लेकिन मिनिमम कंसंट्रेशन का ड्यूरेशन 5 मिनट होना चाहिए। तो हमने ऑब्जर्व किया कि रेड कलर को विजुलाइज करने से हेमोग्लोबिन की परसेंटेज बढ़ गई। एक पेशेंट का 9% हेमोग्लोबिन था, 21 डेज के बाद ही उसका परसेंटेज 11% हो गया, ठीक है। दूसरा एक इंडिगो प्लेट बनाया है, इंडिगो प्लेट में के ऊपर हमने रिसर्च किया, अभी रिसर्च किया, 1 महीने पहले की बात है। इंडिगो कलर को विजुलाइज करने से न्यूरो सिस्टम के डिजीजेस, स्पेशली हेडेक, माइग्रेन और हाथ जो कांपता है ऐसे, कमर की दर्द, वो ठीक हो गए। मैंने उसको 40 दिन का पीरियड दिया था कि 40 दिन में आप ठीक हो जाएंगे ऐसा करेंगे। तो उसका मेरे पास 29वें दिन ही फोन आता है कि मैं तो 90% ठीक हो चुका, मैं होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी जितने ट्रीटमेंट थे मैं करा चुका था, मेरा ये ठीक नहीं हुआ था और आपने जो कहा वैसे ही मैंने किया, 29 दिन में ही 90% मैं ठीक हो गया। तो इसलिए हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया कि ताकि आप कंसंट्रेशन करना सीखें। आप 3D इमेज को देखेंगे तो उस समय माइंड टोटली आपका फोकस रहेगा और फोकस होते समय वो कलर भी साथ साथ देखेंगे तो इसमें माइंड पावर जनरेट होगा। और वो कंसंट्रेशन का पीरियड दिन भर में उतना होना चाहिए जितना आपका एज है। अगर आपका एज 60 साल है तो 60 मिनट जरूर होना चाहिए, चाहे 5-5 मिनट करके 12 बार हो या 10-10 मिनट करके 6 बार हो, चाहे 15-15 मिनट करके 4 बार हो। आप इसका कमाल देखिए, 40 दिन के अंदर आपकी सारी बीमारी ठीक नहीं हो जाती तो कहिएगा ये हमारा ट्रीटमेंट नहीं है, ये सुप्रीम डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, वैद्यनाथ की ट्रीटमेंट है। भगवान को, भोलेनाथ को वैद्यनाथ कहते हैं। क्यों वैद्यनाथ कहते हैं? जरूर उसने कोई काम किया होगा तभी तो वैद्यनाथ कहते हैं ना। आज वैद्यनाथ के नाम पे शरीर की दवाइयां बिकती है, वैद्यनाथ फार्मेसी, शरीर की दवाइयां बिकती है लेकिन माइंड का, सोल का दवाई नहीं बेचती है। आपके पेट में दर्द होगा पेट दर्द की दवाई लेंगे, सिर दर्द होगा सिर दर्द की दवाई लेंगे, लेकिन आपके मन में दुख है, आत्मा कमजोर है, उसके लिए वैद्यनाथ के पास, फार्मेसी के पास कोई दवाई नहीं है, वो दवा है सिर्फ वैद्यनाथ के पास में। और वो वैद्यनाथ कहता है अपने मन को एकाग्र करो, एकाग्रता में शक्ति आएगी। तो एकाग्रता कैसे होगी, उसके लिए आपको चाहिए इमेज, उसके चाहिए आपको कलर। इसीलिए एक प्लेट में 3D इमेजेस है जो आपको ऐसे नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगा, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसलिए ये प्लेट में इमेज, अभी हम और प्लेट बना रहे हैं जिससे हर एक प्रकार की बीमारी ठीक हो जाएगी, हार्ट की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, कैसा हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, सारा ठीक हो जाएगा। ये सारा फॉर्मूला बैद्यनाथ ने इधर हमें दे दिया है, डाउनलोड कर लिया हमने नेट से। तो ये सभी कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। और अभी हम आपको यहां पे जो भी है वो खुद करके आप फील करेंगे कि ये पूरा आप कैसे यहां बैठे बैठे चार्ज हो गए। यहां आप ना पानी पीने की जरूरत है ना करने की जरूरत, मेडिटेशन से चार्ज हो गए। लेकिन उसके लिए भी चाहिए इमेज और कलर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ देखिए, इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमारे मित्र विश्वरूप राय चौधरी, उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी आप राज जो करते हैं आप नींद को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बोला कि जितना चाहे उतना कंट्रोल कर सकते हैं, हमें तरीका पता है स्लीप मैनेजमेंट का। तो उन्होंने बोला कि एक रिकॉर्ड बनाइए। मैं बोला कौन सा रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड कोई ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कि आपको बैठना है 72 घंटा टीवी देखना है कम से कम। मैं बोला ठीक है देख लेंगे। मैंने पूछा कि वो लोग जो वहां पे ऑब्जर्व करेंगे वो क्या देखेंगे, बोले कि वो आपको आंख को देखेंगे कि आपका आंख टीवी के ऊपर है कि नहीं। बोला ठीक है अच्छी बात है, फिर तो वो तो ये थोड़ा चेक करेंगे हमारा तीसरा आंख कहां है ना, उनको तो ये चेक करेंगे दोनों आंखें टीवी पे है, थर्ड आंख से हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे इमेज कलर के द्वारा। और वैसे ही हमने किया, लेकिन एक रिकॉर्ड के साथ में हमने एक मैसेज दिया दुनिया को कि बीमारी शरीर को होती है, मन को बीमार मत कीजिए। मन को बीमार करेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, दिमाग बीमार मत कीजिए। आप देखिए,
अगर आदमी चाह ले तो क्या नहीं कर सकता। नोएडा के बीके चंद्रशेखर ने लगातार टीवी देखने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। इसी के लिए जनाब लगातार 70 घंटे तक टीवी के सामने बैठे रहे। वैसे तो चंद्रशेखर कैंसर के मरीज हैं और उनका मानना है कि बीमारी का वो शरीर पर होता है, दिमाग पर नहीं। चंद्रशेखर ने लगातार टीवी देखने का कनाडा के एस जोयाचिम का रिकॉर्ड तोड़ डाला। जोयाचिम ने सितंबर 2005 में 69 घंटे 48 मिनट टीवी देखने का रिकॉर्ड बनाया था। आज दोपहर करीब 1 बजे चंद्रशेखर ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
आपने देखा, तो एक मैसेज दिया। और जिन्होंने मुझे इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रेरित किया वो विश्वरूप जी ने भी माइंड पावर का यूज करके 1 मिनट में 98 पुशअप लगाया। आप देखिए,
लेकिन जब विश्वरूप मंच पर आए तो माहौल कुछ बदल गया क्योंकि ऐलान हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने का और 1 मिनट में 198 पुशअप लगाकर विश्वरूप ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।
तो अभी माइंड पावर का इतना वीडियो है, आप देखिए। एक और वीडियो मैं दिखाऊंगा दादी जानकी के साथ यूरी गैलर का, जिन्होंने हाथ पे मूली का बीज जमा दिया था। आप देखिए,
expect a red radish in my hand but if something does happen maybe a millimeter or two or three. All right, wait, I'm going to put my glasses on because I want to see this exactly correctly. Are you ready kids to help me? Hey, what are you doing here? Thanks for coming. All right, let's do it. I put my finger on the seeds. Camera can see. Show the seeds. And now, very gently, I begin to stroke the seeds. And I wish one to start sprouting. Children, kids, please look at me because you want to help me. Come on, grow. Sprout. That's what I'm saying. Yeah. No. Come on. Kids, look into my hand. Come on. But let the camera see. Can you see it? People, can you see my hand on the... No, okay, Lizzie. Oh, wait, it's happening. Wait, yes, look, it's growing. Can you see it? Wait, let the camera see it.
Oh my God, oh my God.
Look, yes, wait, it's growing. Wait. Right, look. Look, it's still going. Let me just hold it up. Yeah, just let it focus, yeah? Can you see it? I know it's really far out. Look, it's still going. All right, let me just walk here. So, I don't want you to think that this is a video that is prepared here. Look, you can see the leaves, tiny. Look at this. Can you see it? I mean, this is right under your nose. Yeah. All right. One more time to the camera. One more time to the camera, if you can. Let me put it on the dark. Yeah. See the tiny little leaves under. Okay, now let me finish by saying these words. You know, this is not a spoon anymore. This is not a compass. This is something living. And this is why I believe that our minds can heal.
सुना आपने? That is why he believed that our mind can heal. ये पहले चाबी को bend कर देते थे और compass को needle को deflect कर देते थे. लेकिन जब इन्होंने first time हाथ पे मूली का बीज जमाया, तब इनको realize किया कि mind में कितना power है. Mind हमारे body के cells को heal कर सकती है. तो आप में आप बीमार होते हैं अपने मन के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमेज के द्वारा. आप ठीक होते हैं, निरोग होते हैं मन के अच्छे इमेज के द्वारा. अभी अमेरिका में रिसर्च हुआ. एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई थी. डॉक्टरों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. फांसी देने वाले कैदी को बुलाया गया और उसको सांप दिखाया गया, काला नाग, और कहा गया कि ये सांप आपको काटेगा, आपको हैंग नहीं किया जाएगा. जितने बजे आपको फांसी की सजा दी जाने वाली है उसी समय ये नाक से कटवाया जाएगा, और जैसे ये नाक काटेगा आपका चेहरा नीला होता जाएगा और 10 मिनट के अंदर आप शरीर छोड़ देंगे. जिस दिन उसको फांसी की सजा सुनाई दी जाने वाली थी उस दिन उसको बुलाया गया. 5 मिनट पहले उसको काला रंग का कपड़ा से उसका सिर ढक दिया गया, उसको लेटा दिया गया. एग्जैक्टली फांसी के टाइम के समय उसको नाक से नहीं कटवाया गया, एक स्विच चुभो दी गई. स्विच चुभोने के बाद में उसने उनका माइंड में क्या टाइप किया, कंप्यूटर में क्या टाइप किया कि काला नाग ने हमें काट लिया, अब तो मेरा शरीर नीला हो जाएगा. और वो नीला कलर विजुलाइज करने लगे और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर नीला हो गया और 10 मिनट के अंदर वो मर गया. उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि ये इसकी मृत्यु जहरीले सांप के काटने से हुई है. यानी ब्लड में जहर, पॉइजन किसने पैदा की? माइंड ने. क्यों पैदा की? क्योंकि जहर का इमेज को आपने देखा. आप मीराबाई का इतिहास गवाह है. मीराबाई का आपने नाम सुना होगा. मीराबाई को दूध में जहर डाल के दिया गया कि नहीं दिया गया? लेकिन उनको क्या बताया गया, कौन सा इमेज दिया गया उनको कि ये कृष्ण का चंद्रामृत है, अमृत है. और उन्होंने अमृत देकर के विजुलाइज किया, कुछ भी नहीं हुआ. तो माइंड कैन हील, माइंड कैन कील. ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को हील करते हैं कि कील करते हैं. तो माइंड को मैनेज करने के लिए आपको पॉजिटिव इमेज डेवलप करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अल्टरनेटिव. ये रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट कंडीशन है. जितना आप निगेटिव इमेज विजुलाइज करेंगे आपका हार्ट बीट बढ़ेगा और वो बीमार होंगे. हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, सारा चीज ब्लॉक हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा. इसलिए माइंड से नेगेटिविटी हटाने के लिए राजयोग मेडिटेशन के सिवाय कोई उपाय नहीं है. इसीलिए एक किताब भी बाबा ने मेरे से लिखवाया, अभी इस मशीन के साथ है, इंश्योर योर क्योर. डॉक्टर ट्रीट्स, डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, वी ट्रीट ही क्योर्स. कौन क्योर करता है? गॉड. क्योर कैसे होगा? जब आपका माइंड खुद आप क्योर करेंगे तब आप क्योर होगा. आप फिजिकल योगा से फिजिकल बॉडी को मजबूत करेंगे, लेकिन वो योगा, फिजिकल योगा से सुपर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज राजयोगा. हमारा राजयोग है. इसी तरह मेमोरी को भी मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इमेज बदलना पड़ेगा. हमारे मेमोरी लैब की एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ऐसे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिससे मेमोरी बढ़ाई जाती है, लेकिन सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने नाम लिखा मेमोरी क्लॉक. आप घड़ी पहनते हैं, घड़ी में एक दो एक से बारह तक लिखा होता है, लेकिन ए मेमोरी क्लॉक में एक से बारह तक के इमेज को हमने क्या बदल दिया, हर डिजिट्स को एक इमेज में बदल दिया। और इस विधि का नाम है राइम मेथड। जैसे वन सन, वन को हमने किससे कर दिया, सन से। जब भी आप वन बोलेंगे वन का इमेज हम क्या देखेंगे, सन। जैसे आप टू बोलेंगे टू का इमेज हम क्या देखेंगे, शू। थ्री थ्री का इमेज क्या देखेंगे, ट्री। फोर फोर का इमेज क्या देखेंगे, डोर। फाइव फाइव का इमेज क्या देखेंगे, नाइफ। सिक्स का इमेज क्या देखेंगे, किक्स। सेवन का इमेज क्या देखेंगे, हेवन। एट का इमेज क्या देखेंगे, प्लेट। नाइन का इमेज क्या देखेंगे, वाइन। टेन का हेन। इलेवन का लेमन। ट्वेल्व का सेल्फ। इसी तरह हम और आगे भी बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपको ये 16 पॉइंट्स याद करने हैं, ये 16 पॉइंट्स आपको याद करें। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है ना आपको, लग रहा है कि नहीं, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, कैसे याद होगा। आपको याद करने के लिए कहूं तो आपको 10 मिनट में भी नहीं याद होगा, आपको आधा घंटा लग जाएगा इसको याद करने में। लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए, लगेगा। लेकिन फिर भी भूल जाएंगे इसमें से दो तीन पॉइंट। लेकिन ये मेमोरी क्लॉक आपने देखा, इस मेमोरी क्लॉक के सहारे ये 16 पॉइंट्स को आप इजिली दो मिनट के अंदर आप याद कर सकेंगे। करना चाहते हैं आप सभी, करना चाहेंगे? ओके ठीक है। तो एक बार कोड को रिकॉल कीजिए, इसमें 16 पॉइंट है तो 16 कोड को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। 16 अलमीरा के रैक्स बनाने पड़ेंगे जहां पे इन सारे को रखना पड़ेगा। जैसे हमारा ब्रेन क्या है, हमारा ब्रेन के थ्रू जो मेमोरी में इंप्रेशन होता है उसमें मेमोरी के लिए रैक बनते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में सेल्फ बनाए होते ही नहीं बनाए होते हैं, सेल्फ में ही तो बुक्स रखते हैं। ऐसे ही बुक्स आपने फेंक दिया तो अगर बोला जाए कि आप बुक ढूंढ के लाओ तो लाएंगे, नहीं लाएंगे। उसी तरह मेमोरी मैनेजमेंट के लिए आपको मेमोरी रैक बनाना पड़ेगा, मेमोरी सेल्फ बनाने पड़ेंगे। तो मेमोरी सेल्फ के लिए है मेमोरी क्लॉक। एक नंबर के लिए हम क्या विजुलाइज करेंगे, सन। टू नंबर के लिए क्या विजुलाइज करेंगे, शू। थ्री नंबर के लिए क्या रखेंगे, फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स के लिए, किक्स। सेवन के लिए, एट के लिए, नाइन के लिए, टेन के लिए, इलेवन के लिए, ट्वेल्व के लिए, सेल्फ। थर्टीन, थर्टीन के लिए थर्स्टी देख लीजिए, थर्स्टी प्यासा व्यक्ति, पानी पी रहा है। फोर्टीन फोर्ट, फोर्ट को देख लीजिए, लाल किला को देख लीजिए, देख लेंगे ना फोर्ट, बड़ा सा फोर्ट को देख लीजिए। फिफ्टीन वेट लिफ्टिंग देख लीजिए, वेट लिफ्टिंग। हम बताएंगे आपका, एज के साथ कुछ भी नहीं होता, एक गलत धारणा है। आप जैसे मेमोरी में डालेंगे ना माइंड में कि हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारा तो सेल्स डिस्ट्रॉय होगा, मेमोरी लॉस हो जाएगी, तो आपका कंप्यूटर आपका आदेश मानेगा, वो जल्दी जल्दी ब्रेन के सेल्स को मारेगा और आपकी मेमोरी खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं योगा के द्वारा माइंड मेमोरी बॉडी सब ठीक हो जाता है। कराएंगे ना, मैं तो बता रहा हूं ना, हम कराएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं बिना कराए। यहां तो मैं अनुभव के लिए बुलाया हूं, आपने टाइम दिया तो किस लिए दिया, अभी आप समझिए। योगा सिखाएंगे आपको, योगा कराएंगे, आप फील करेंगे वहां बैठे बैठे पावर का। ये बच्चों ने फील किया, आप भी फील करेंगे वहां बैठे बैठे, फील करेंगे अभी 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो 15 16 16 को क्या करेंगे, 16 तीन जानते हैं, तीन सिक्सटीन देख लेंगे, तीन तीन होता है ना कंटेनर, सिक्सटीन सिक्सटीन को सिक्सटीन देख लिया। ओके अभी ये 16 पॉइंट्स को याद करना है। तो आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स, वन वन पे क्या था, वन पे हम वो सेल्फ को जगह सन, अब सन को और विनिंग फ्रेंड्स को एसोसिएट करेंगे। सभी आंख बंद करें एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और एक कलरफुल इमेज देखिए, सभी एक कलरफुल इमेज देखिए कि सन सूरज नीचे उतर के आ रहा है और सबसे हैंडशेक करके दिल जीत रहा है और फ्रेंडशिप कर रहा है। आप उससे हाथ मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, सन की गर्मी नहीं लग रही है, बिकॉज सन इज योर फ्रेंड। टू शू, दो नंबर पे जो क्वालिटी है आर्ट ऑफ डीलिंग एंड अपीजिंग है। आप देखिए, आप जूते खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं, दुकानदार आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, देखिए आप दुकानदार को देखिए, विजुलाइज कीजिए कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, आप उससे दुकानदार से इंप्रेस हो जाते हैं और इंप्रेस होकर के घर भर के लिए जूते खरीद लेते हैं, उसकी डीलिंग है ना, पीजिंग इतनी अच्छी है। तीन नंबर पे है आपका ट्री, ट्री ट्री, और तीन नंबर पे क्वालिटी है आर्ट ऑफ रिफॉर्मिंग, रिफ्रेशिंग एंड डेवलपिंग। अब इसको एसोसिएट कीजिए, आप देखिए मेंटल इमेज पे आप मन करके आराम से कलरफुल इमेज देखिए कि एक पेड़ है, आप ट्री 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 में आप क्या देखेंगे, ट्री, और ट्री को क्या देखेंगे, ट्री को क्या देखेंगे कि रिफॉर्मिंग है ना, आप रिफॉर्म कर रहे हैं उसको, जो शेप है उसको क्या कर रहे हैं, कटिंग करके एक शेप दे रहे हैं, रिफ्रेशिंग पानी डाल रहे हैं, एंड डेवलपिंग वो ग्रो हो गया। आप देखिए पौधा है, पौधा को आपने ट्रिम किया, रिफॉर्म किया, पानी डाला, रिफ्रेश कर दिया और वो ग्रो हो गया, डेवलप हो गया, देख लिया आपने मेंटल पिक्चर पे। ओके, फोर नंबर पे है फोर इज डोर, फोर इज डोर, और डोर के साथ में एसोसिएट करना है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड कंटेंटेड। आप देखिए दरवाजे पे एक बेल दबाते हैं और बेल से आवाज आती है, खुश रहो संतुष्ट रहो, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड कंटेंटेड, आवाज को सुनिए, खुश रहो और संतुष्ट रहो, ऐसा बेल से आवाज आता है। फिफ्थ नंबर पे है आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फिफ्थ नंबर पे आपका एसोसिएशन के लिए ऑब्जेक्ट है नाइफ। आप देखिए कि एक व्यक्ति नाइफ लेकर के जाता है ऑफिस में और सबको चाकू दिखा के अपना प्रशासन चलाता है, कोई काम नहीं करता इसलिए दोहराता है, तो आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि विजुलाइजेशन फनी होना चाहिए। सिक्स इज किक्स, सिक्स पे है आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। आप देखिए एक व्यक्ति है वो जूडो कराटे सीखा, किक मारता है बहुत अच्छा, और फिर दूसरों को भी किक मार के जूडो कराटे सिखा रहा है, आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ कराटे बाय किकिंग। सेवन इज हेवन, और हेवन से एसोसिएट करने की क्वालिटी है आर्ट ऑफ एंजॉइंग वर्क्स एंड लीजर, काम को भी एंजॉय करेंगे और खाली समय को भी एंजॉय करेंगे, दोनों को एंजॉय करेंगे। तो आप इमेज बनाइए कि हेवन में सारे लोग जा रहे हैं ये देखने के लिए कि देवताएं कैसे एंजॉय करते हैं और कैसे अपना काम करते हैं। सभी आपने हेवन की विजिट किया, वहां पर देखे कि देवताएं आराम से काम भी कर रहे हैं और काम करने के बाद में रास भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एट नंबर पे है प्लेट, और यह आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप देखिए एक व्यक्ति है वो मौन व्रत रखा है, आप उसके पास जाते हैं वो बात नहीं कर रहा आपसे, वो क्या कर रहा है प्लेट के ऊपर लिख करके आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि आज मेरा मौन व्रत है, मैं ये बोलना चाहता हूं, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नाइन आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, एक नाइन के साथ ऑब्जेक्ट है वाइन। आप देखिए एक व्यक्ति शराब पीने का हैबिचुअल हो गया है, आप उसको जाते हैं अच्छी बातें सुनाते हैं, उसका शराब छुड़वा देते हैं और उसको आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स करा के उसकी पर्सनालिटी को बदल देते हैं। टेन पे है हेन, हेन हेन से और एसोसिएट करना है आर्ट ऑफ डूइंग सोशल सर्विस फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर। एक हेन है, मुर्गी है, वो 3:30 बजे सबके दरवाजे पे जाकर के आवाज कर रही है, जगा रही है, बोल रही है कि सभी उठो, ये टाइम है स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए, योग करने के लिए। तो क्या कर रही है हेन, सोशल सर्विस कर रही है सबको जगा करके परमात्मा से योग लगाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ सोशल सर्विस फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर। 11 पे है आर्ट ऑफ रिवीलिंग एंड कंसीलिंग। 11 नंबर पे है लेमन। आप देखिए आपको एक छोटे बच्चे ने कहा कि आप मेरे लिए मार्केट से लेमन लेके आइए, लेमन, और आप लेके आए, लेकिन जब बच्चा मांगता है तो आप छिपा लेते, बोलते हैं मैं तो लेमन लाया नहीं, फिर जब वो रोने लगता है तो फिर लेमन उसको दे देते हैं, वो चुप हो जाता है। तो दिस वॉज आर्ट ऑफ कंसीलिंग एंड फिर आर्ट ऑफ रिवीलिंग। 12 सेल्फ, आर्ट ऑफ लीडरशिप। एक सेल्फ है अलमीरा में, उसके उस सेल्फ में बहुत सारा पिक्चर्स रखा हुआ है लीडर्स का, विवेकानंद का, है ना, स्वामी दयानंद का, महात्मा गांधी का, जितने लीडर्स हैं अच्छे अच्छे उनके सारे के फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। सेल्फ आर्ट ऑफ लीडरशिप एसोसिएट किया आपने। 13 थर्स्टी आर्ट ऑफ सस्टेनेंस। आप देखिए सस्टेनेंस पालना देने की कला, किसी को कैसे पालना दिया जाता है ना, कैसे हम पालना देंगे। तो पालना देने के लिए आप देखिए सब बहुत प्यासे हैं, लोग भूखे प्यासे हैं, आप उनको पानी पिला रहे हैं पहले, फिर खाना भी खिला रहे हैं, साथ साथ उनको मेडिटेशन भी सिखा रहे हैं, उनको एक अच्छा बेटर ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं। देखिए को आर्ट ऑफ सस्टेनेंस। फोर्थ देखा आपने, आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इंटू बेस्ट। आप देखिए फोर्थ के अंदर कचरा भरा हुआ है, आप जाते हैं सारे मिल करके उस कचरे की सफाई करते हैं फोर्ट के अंदर, और एक अच्छा मेडिटेशन का कैंप लगाते हैं, उस जगह को वेस्ट को हटा करके वेस्ट में बदल देते हैं। 15 वेट लिफ्टिंग, यहां पे है आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। आप देखिए कि एक व्यक्ति है वो स्टेज पे वेट लिफ्टिंग कर रहा है, साथ में डांस कर रहा है, एंजॉय सबको एंटरटेन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। 16 आर्ट ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। आप देखिए एक व्यक्ति ने 16 में मेडिसिन भर के दे दिया और बोला कि इसमें टॉनिक्स है, ये सारा टॉनिक्स पिएंगे आप पूरे 150 साल जिएंगे, यू विल मेंटेन गुड हेल्थ। ये 16 कलाएं हैं, यही 16 कलाएं सतयुग में होती है, इसीलिए श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 2 कलाएं नीचे से कम हो जाती है त्रेता में, कौन कौन सी, आर्ट ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। आर्ट ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ कम होने से सतयुग से त्रेता में आयु कम हो जाती है, एंटरटेनमेंट खत्म हो जाता है, इसलिए कृष्ण के साथ दिखाते हैं, कृष्ण डांस करते थे लेकिन रामचंद्र जी को दिखाया जाता है वो डांस नहीं करते थे। तो 2 कलाएं नीचे से कम हो जाती है, 14 कला हो जाती है, ये है आर्ट ऑफ परफेक्शन। अभी आपको याद हो गया कि नहीं हो गया आप बताइए। इस मेमोरी क्लॉक के सहारे मैं अगर पूछूं पहला नंबर पे क्या था, आर्ट ऑफ मीनिंग फ्रेंड्स, 2 नंबर पे क्या था, आर्ट ऑफ डीलिंग एंड अपीजिंग, वेरी गुड, 3 नंबर पे क्या था, रिफ्रेशिंग एंड डेवलपिंग, वेरी गुड, 4 नंबर पे क्या था, आर्ट ऑफ डोर से क्या आवाज आया, बेल से क्या आ जाया, बीइंग हैप्पी एंड कंटेंटेड, 5 से क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड, 6 पे क्या है आपका, आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, 7 पे क्या था, आर्ट ऑफ एंजॉइंग वर्क्स एंड लेजर, हेवन में किस लिए गए थे, वर्क, 8 पे क्या था, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, 9 पे क्या था, पॉजिटिव थिंकिंग, 10 पे क्या था, हेन क्या कर रही थी, सोशल सर्विस, स्पिरिचुअल वेलफेयर के लिए, 11 पे क्या था, 11 रिवीलिंग एंड कंसीलिंग, वेरी गुड, 12 पे क्या था, सेल्फ में क्या था, लीडर, आर्ट ऑफ लीडरशिप। थर्स्टी के क्या देखा कि आपने, आर्ट ऑफ सस्टेनेंस, उनको पालना दिया, आर्ट ऑफ सस्टेनेंस। फोर्थ से क्या था, फोर्थ में क्या था, वेस्ट को बेस्ट में बदल दिया। 15 वेट लिफ्टिंग से क्या था आपका, एंटरटेनमेंट, और 16 क्या था, आर्ट ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो इस पर आप याद कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि कहां है मम्मा के बाने, आप दीजिए तो आएंगे, आ रही है, ओके ठीक है। अभी आपको हम याद कराने का, ए मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कैसे याद करें, आप देखिए 16 पॉइंट आपको याद होगा कि नहीं, हो गया ना। अगर मैं आपसे पूछूं 7वें नंबर पे क्या था तो क्या बोलेंगे आप, आर्ट ऑफ, बिल्कुल, आर्ट ऑफ एंजॉइंग वर्क एंड लेजर। अगर मैं 10 नंबर पे पूछूं क्या था, सोशल सर्विस एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर, और 16 नंबर पे क्या था, मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो आप देखिए इस तरह अगर याद करेंगे तो क्या आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लगेगा ना, आपको टीचर क्या बोलता है, ये लो 16 पॉइंट याद करो। अब आप लगे हुए हैं आर्ट ऑफ लीडरशिप, आर्ट ऑफ सोशल सर्विस, ऐसा बोल बोल के याद कर रहे हैं, वो कितना जाएगा आप बताइए, मेमोरी में जाएगा, तो आपको इमेज और कलर से कितना पढ़ाई इजी हो जाता है, हो गया कि नहीं हो गया, इजी हो गया ना। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ मेडिटेशन एंड पावर ऑफ मैनेजिंग माइंड, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए हिस्ट्री की डेट से याद करनी है, 1921 में गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, 21 को हम कैसे देखेंगे, एक स्टेज बना लेंगे, 2 को हम देखेंगे बहुत बड़ा सा स्टेज, डक के फॉर्म में स्टेज है, और माइक लेकर के 1 हो गया, उस माइक को लेकर के गांधी जी भाषण दे रहे हैं जैसे राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी किस साल में कैसे, हमें क्या याद आएगा, स्टेज आएगा, वो माइक याद आएगा, 2 और 1, हमें 21 कभी भूल पाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो 20, 21, 22, 23, क्या कंफ्यूजन होगी? नहीं होगी। तो ये सारे फॉर्मूले पहले थे, और इस फॉर्मूले को नेमोनिक्स कहा जा रहा था। जितना रामायण और महाभारत लिखा गया ना, सारा नेमोनिक्स है। इसीलिए कहा जाता है राम की सीता चोरी हो गई, है ना, सारा रामायण खत्म हो गया। और राम की सीता कौन थी, सीता कौन थी, सीता कौन थी? आप कहेंगे राम की पत्नी थी, रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ये सारा नेमोनिक्स है, ये हमारी कहानी है। आत्मा कहा जाता है राम को, हम कौन है, राम। बुद्धि हमारी क्या है, सीता। और लक्ष्मण, लक्ष्मण मतलब मन का लक्ष्य, मन का लक्ष्य, मन का लक्ष्य क्या है, आत्मा के अंदर सात की क्वालिटी होना चाहिए, वो बाउंड्री, बाउंड्री। लक्ष्मण रेखा का मतलब वो मन का लक्ष्य का रेखा, जब उस मन के लक्ष्य की रेखा से बुद्धि रूपी सीता बाहर जाती है, रावण बुद्धि को पकड़ लेता है और उस बुद्धि में रॉन्ग इमेज डाल देता है। रावण किसको कहा जाता है, रुलाने वाले को, दुखी करने वाले को रावण कहा जाता है। तो रावण उस बुद्धि में क्या करता है, हमेशा रोने वाला, दुखी करने वाला इमेज डाल देता है, विकारों का इमेज डाल देता है, और आत्मा रूपी राम बुद्धि रूपी सीता को भूल जाता है। और कैसे भूलता है, वो कहां भागता है, सोने के मनिक के पीछे, मतलब कर्म करता, राम कौन है, करता, वो कहां भागता है, सोने के मनिक के पीछे। सोने के मनिक मतलब ये पूरा संसारिक वर्ल्ड के पीछे, ये इतने में ही सारा रामायण है। और जब राम की सीता चोरी हुई, राम एक का प्रतीक नहीं है, हर आत्माएं राम है, हम सबकी सीता है चोरी हुई। तो सीता जब चोरी हुई तो सबसे पहले लड़ाई किसने की, जटायु ने, किसने की, तो जटायु किसको कहते हैं, जटा वाले, है ना, जटा वाले कौन, साधु सन्यासी, है ना। और जटा वाले साधु सन्यासी अपने योग बल से उड़ते थे कि नहीं, इसलिए दिखाया जाता है उनको, जटायु गिद्ध जो होता है ऊपर उड़ता है, उनमें ताकत थी आत्मा की। लेकिन रावण ने उनका भी पंख क्या काट दिया, पंख काट दिया, उन साधु सन्यासियों को भी नीचे गिरा दिया, है ना, वो भी गए। कहने का मतलब हर आत्माएं रूपी राम की सीता कहां है, शोक वाटिका में बैठी हुई है। अब जब तक हम राम उस रामेश्वर से कनेक्शन नहीं करेंगे, नाभि में तीर नहीं मार, नाभि में तीर मारना मतलब जड़ में अप्लाई करना, आत्मा लेवल पे, बुद्धि लेवल पे जाकर के राजयोग के अभ्यास से ज्ञान और योग के तीर चलाएंगे, तब जाकर के ये रावण का गर्दन कटेगा, बुद्धि रूपी सीता से वो सारा इमेज डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तभी तो आप जीत पाएंगे। ये सारी बातों को समझाने के लिए इतनी बड़ी कहानी बना दी गई रामायण का, लोगों को समझ में आया नहीं, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, तभी तो पूछते हैं, सारा रामायण पढ़ लिया, सीता कौन थी पता ही नहीं। ये ही सारा नेमोनिक्स है, याद करने का तरीका है, है ना। जैसे एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, किसको समझाना है किसी को, तो यूनिटी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि यूनिटी का कोई पिक्चर नहीं है, स्ट्रेंथ का कोई पिक्चर नहीं है। इसके लिए पिक्चर बना दिया गया कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, आपस में लड़ते थे, इसका मतलब डिसयूनिटी था, है ना। फिर उनका पिता लकड़ी के बंडल मंगवाए, अलग अलग तोड़वाए, फिर बंडल को तोड़वाए, बंडल टूटा नहीं, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि एकता में बल है। तो एवरीथिंग, जितने मोरल स्टोरीज है, वो सारे के सारे को किस रूप में समझाया गया, इमेज कलर के रूप में है। मुरली है, आ रही है, ओके। तो हर चीज को जब तक हम रहेंगे कोई भी चीज आप याद नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए हर डिजिट्स को इमेज में बदलना पड़ेगा। आप बोले नंबर कैसे याद किया, नंबर को हमने इमेज देखा, बिना नंबर का कुछ भी हो नहीं सकता, ये देखना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव। इसलिए वेद वेदों को समझाने के लिए स्टोरीज बनाई गई, इतने सारे पुराण लिखे गए। सारे पुराण क्या है, वेद को समझाने के लिए वो सारा इमेज है, ठीक है। तो अभी आपको कोई भी पॉइंट याद करना हो, क्वेश्चंस याद करना हो, मुरली याद करनी, जैसे अभी मम्मा की मुरली आ रही है उसको हमें याद कराना है, मम्मा ने क्या बोला था, है ना। आप सभी याद करते जाएंगे एक एक साथ मेरे साथ में, आ गया। अभी आपके सामने मेमोरी क्लॉक है, एक एक पॉइंट्स को इस वन एक एक पॉइंट से जोड़ना है, मेन मेन पॉइंट्स को, ठीक है। अगर 10 पॉइंट्स भी आप सुना पाते हैं मुरली के बाद में, आप एक्सेलेंट रेट करे किए जाएंगे, ठीक है। ओके,
ओम शांति। शिव बाबा के सत्य ज्ञान को सुनकर, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मामुख से महावाक्य उच्चारण करते हैं, उस सत्य ज्ञान पर मम्मा कैसे मनन चिंतन करके फिर लोगों के सामने रखती थी, समझाती थी, तो वो मम्मा के महावाक्य हैं। 21 जून 64 की ये मुरली है, माना मम्मा का ये चिंतन है बाबा के महावाक्य पर। मुरली का सार है, स्वयं में सतो प्रधानता की पावर लाने के लिए सदा श्रेष्ठ कर्म करते रहो। सतो प्रधान माना पूर्ण शुद्ध पवित्र, तो खुद में सतो प्रधानता की शक्ति लाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते रहो। इससे पापों का बोझ, बंधन व रुकावटें हटती जाएगी। जितने श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा होता जाएगा तो पाप कर्म का जो बोझ है, बंधन है, जो रुकावट है, डिस्टर्बेंस, वो खत्म होता जाएगा। ओम शांति। नॉलेज फुल, ज्ञान का सागर, बेहक का बाप, आत्माओं से बात करते हैं। आत्माओं की जो ओरिजिनल स्टेज थी, अभी वह कुछ और हो गई है। अपने ओरिजिनल नेचर में हर आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, सत्य है, लेकिन अभी वो स्थिति बदल गई है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा सदा से एक ही स्टेज में है। आत्मा अनादि है, परंतु उसकी स्टेज बदलती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनकी स्थिति बदलती जाती है। समय और प्रकृति के संसर्ग में आते आते आत्मा अपनी ओरिजिनल सतो प्रधान स्थिति से सतो रजो तमो तमो प्रधान स्थिति में आती है।
कोई दो एडवोकेट्स को अभी जाना था,
ऑन ऑन माइक ऑन।
दो एडवोकेट्स को अभी जाना था महेश्वरी भाई जी के साथ, तो आप तुरंत अगर यहाँ बैठे हैं तो जाएं, क्योंकि वो निकल रहे हैं, पहुंच जाएं।
आत्मा अनादि अविनाशी है, लेकिन आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल पाती है। तो करने वाली कर्ता आत्मा रेस्पॉन्सिबल है। जो फल हम पाते हैं उसके जवाबदार हम खुद ही है, क्योंकि हम करता है, हम भोगता है। तो अभी बाबा उनसे बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। ये तो सबकी बुद्धि में है कि आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा नहीं, वो पिता है तो हम भी पिता है। जैसे कहीं कह देते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा है, अब परमात्मा को हम पिता कहते हैं। अगर हम आत्माएं भी परमात्मा है तो हम भी पिता हो गए फिर तो। अगर आत्मा सो परमात्मा कहे तो आत्मा को ही परम पिता कहे, परंतु पिता और पुत्र के रिलेशन में पिता कहने में आता है ना। अगर आत्मा ही परमात्मा है फिर तो आत्मा भी परम पिता हो गई। अब पिता शब्द पुत्र के संबंध में कहा जाता है ना, तो जरूर आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। अगर हम सब भी पिताएं हैं तो फिर पिता कहेगा कौन? जरूर पुत्र और पिता दो चीज हैं। पिता कहने का संबंध पुत्र से बनता है और पुत्र के संबंध में ही पिता का संबंध आता है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तो अभी वो परमात्मा बाप बैठ करके समझाते हैं कि अभी तुम्हारी जो स्थिति है और पहले जो स्थिति थी उसमें फर्क है, अभी मैं आया हूं उसी फर्क को मिटाने। पहले तुम सतो प्रधान थे, सत्य थे, शांत आनंद प्रेम स्वरूप थे, और अभी अभी पति तमो प्रधान दुखी अशांत बन गए। तो ये जो अंतर आ गया है उसको मिटाने के लिए परमात्मा पिता आए हैं। बाप समझ दे करके समझाते हैं कि तुम्हारी जो ओरिजिनल स्टेज थी अभी उसी को पकड़ लो। कैसे पकड़ो, कैसे फिर से ओरिजिनल स्टेज प्राप्त करो, उसका ज्ञान भी दे रहे हैं तो बल भी दे रहे हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो श्रेष्ठ कर्म करने का बल आएगा, नहीं तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ नहीं रहेंगे। कई कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अच्छा काम करें, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है, जो हमारा मन अच्छे तरफ लगता नहीं है दूसरी तरफ लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आत्मा में अच्छे कर्म करने का बल नहीं है। हमारी स्थिति तमो प्रधान होने के कारण तमो का प्रभाव अभी जोर से है जो हमको दबाता है, इसलिए बुद्धि उसी तरफ जल्दी चली जाती है और अच्छे तरफ बुद्धि जाने में रुकावटें आती हैं। तो बाबा कहते हैं अभी मेरे से योग लगाओ और जो मैं समझ देता हूं ज्ञान देता हूं उसी के आधार से अपने पापों का जो बोझा है बंधन है जो रुकावटें सामने आती हैं उससे अपना रास्ता साफ करते चलो, फिर श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे तो तुम्हारे में सतो प्रधानता की पावर आती जाएंगी, उसी आधार से तुम फिर से उस सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करेंगे जो तुम्हारी असल ओरिजिनल में स्थिति थी। फिर जैसी आत्मा की स्थिति वैसा शरीर भी मिलेगा और वैसा ही संसार भी मिलेगा। ओम शांति। ये है मम्मा का चिंतन बाबा के ओरिजिनल ज्ञान पर। मम्मा ऐसे चिंतन करके समझाती थी तो बुद्धि में बैठ जाता। ओम शांति।
कितने पॉइंट्स आप लोगों के याद हुए शुरू से लेकर आखिर तक? एक एक स्टेप याद कराऊं आप लोगों को? दीदी ने मुरली पढ़ा, हमने कहां टाइप किया? अपने कंप्यूटर में टाइप किया। कैसे टाइप किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप भी टाइप कर लेंगे और सारे याद करके जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट्स क्या था? सन है ना, हमने सन से इसको एसोसिएट किया। सतो प्रधान बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करो और अपने पापों को भस्म करो। हमने क्या देखा कि सूर्य नीचे आया है ना, अच्छा कर्म कर रहा है, उसकी जो अग्नि है शीतल हो गई है और बिल्कुल सतो प्रधान हो गया है और उसके पाप अग्नि में जल गए हैं। इस तरह हमने विजुलाइज किया। पहला पॉइंट तो यही था ना, सतो प्रधान बनने के लिए क्या करो? श्रेष्ठ कर्म करो और अपने पापों को भस्म करो। दूसरा पॉइंट जूता है ना, शू है। इससे हमने क्या रिलेट किया कि आत्मा ना सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गई है, पुरानी हो गई है। जूता जैसे पुराना होता है, नया अच्छा लगता है, जूता फिर पुराना हो जाता है। इस तरह क्या हो गया है ना, जूता पुराना हो गया, आत्मा भी उसी तरह क्या हो गया? सतो प्रधान से पुरानी हो गई है ना। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही मम्मा ने बोला ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? ट्री। ट्री से क्या पेड़ पे क्या आता है? फल। मामा ने श्रेष्ठ कर्म के लिए बोला, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए तभी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, बोला ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो हमने पेड़ से ये पॉइंट नोट किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डोर। दरवाजे से हमने कौन सा पॉइंट एसोसिएट किया? पिता और पुत्र का संबंध। मम्मा ने किसके ऊपर जोर दिया? पिता और पुत्र के रिलेशन के ऊपर है ना, कि पिता आया है क्या करने के लिए? अपने बच्चों के लिए आया है। बच्चे जब पिता कहते हैं इसी में पुत्र का संबंध समाया हुआ है, पुत्र में ही सारा संबंध पिता का समाया हुआ है। और वो पिता किस लिए आया है? किस लिए आया है? चाकू। चाकू में बाबा, चाकू में जंग लग जाता है, वर्ड मामा ने बोला ना, जंग लग गया है आत्मा। तो हमारे आत्मा के ऊपर जो जंग लगा है उसको क्या करना है? वो जंग मिटाने के लिए आया है कि नहीं आया है? बाप आया है। और फिर सिक्स पॉइंट्स क्या है? किक। इससे हमने मन के ऊपर, आत्मा ने मन के ऊपर, मम्मा ने मन के ऊपर बोला कि मन क्या है? इधर उधर भागता रहता है ना, बुरी बातों में फंसता रहता है, एक दूसरों को किक मार के मतलब दुख देते रहते हैं है ना। तो मन को क्या करना है? मन को हमें सतो प्रधान बनाना है। सेवन क्या है? हेवन है। सतो प्रधान बनने के लिए अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए अपना रास्ता साफ करना है। आप देखिए स्वर्ग है, स्वर्ग में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? रास्ता को साफ कर रहे हैं, कांटों को हटा रहे हैं है ना। और इस तरह आत्मा क्या बन जाती है? सतो प्रधान बन जाती है। फिर हमें क्या मिलता है? ग्लोब, पूरे संसार का राजभाग भी मिलता है, प्लेट के ऊपर ग्लोब है। तो इस तरह आप सुनेंगे और साथ साथ एसोसिएट करेंगे तो सारा पॉइंट्स याद होगा कि नहीं होगा? होगा ना। शुरू में आप पॉइंट्स को लिख लीजिए, लिख करके आप एसोसिएट कीजिए। बिना एसोसिएशन का आपकी मेमोरी बढ़ ही नहीं सकती। तो यहां पे भी क्या यूज हुआ? इमेज और कलर। आपको पॉइंट्स याद हुए कि नहीं हुए? मम्मा ने बोला जिस समझ में आ गया ना। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। कि मेडिटेशन से कैसे माइंड पावर होगा। यहां पे जितने लोग हैं सारे चार्ज, थोड़ा आगे आ जाएं, सभी आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। मेडिटेशन के द्वारा सभी पावर फील करेंगे, आप देखेंगे, यहां प्रूफ भी कर देंगे आपको बुला करके, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना है सभी को।
प्रकाश से प्रकाश की अद्भुत चमत्कार पूर्ण यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो अंधेरे सुरंग से निकलकर एक नई चमकती दुनिया में ले जाएगी। ऐसी दुनिया जो शांति से परिपूर्ण है, स्वयं को आराम की स्थिति में स्थित कर लीजिए, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, आपका मन सभी प्रकार से विचारों से मुक्त होना चाहिए। धीरे धीरे सभी विचार आपके अंदर से निकलते जा रहे हैं, आप उन्हें जाते हुए देखिए, रोकिए या दबाइए नहीं, बस जाते हुए देखिए उन्हें और स्वयं में हल्कापन महसूस करते जाइए। उंगली की तर्जनी को गोलाकार मोड़ लें और अंगूठे से दबा कर रखिए। हाथ की बाकी तीन उंगलियां खुली व सीधी रखिए। इसे वायु मुद्रा कहते हैं। तो इस मुद्रा में अपने आप को स्थित कीजिए। न्यूरोबिक्स एवं ब्राजियो सहगामी है इस अद्भुत यात्रा का अनुभव करने के लिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और ऐसा करते हुए विचार कीजिए कि तेज चमकती हुई नीली गैस अंदर आकर फेफड़ों को शांति से भर रही है और सांस छोड़ते हुए विचार कीजिए कि तनाव की काली और विषाक्त गैसें बाहर निकल रही है और आप असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब आप लंबी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। यह विचार करते रहिए कि चमकदार नीली गैसें अंदर जाकर काली विषाक्त गैसों को निष्क्रिय कर रही हैं। इसका अभ्यास कम से कम 5 बार कीजिए। अनुभव कीजिए आपके मस्तक के मध्य एक चमकता हुआ दिव्य सितारा स्थित है। स्वयं के मस्तक के ठीक बीचों बीच विराजमान है। धीरे धीरे अपनी समस्त ऊर्जा को पैर के अंगूठे से घुटनों तक, घुटनों से कूल्हों तक, कूल्हों से पीठ के पीछे हिस्से तक और ऊपर कंधों तक और अंततः गर्दन तक खींचिए। आपकी समस्त ऊर्जा बाह्य भौतिक शरीर एक खाली ढांचे के समान है जो अनुभूति भावनाओं व शक्ति से रहित है। स्वयं के मस्तक के ठीक बीच में बैठे हुए मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ आशीर्वाद की उस वर्षा का जो एक और सिर्फ एक सर्वशक्तिवान सर्वोच्च सत्ता पिता परमात्मा से निकलकर हमारे ऊपर रंग बिरंगी किरणों के रूप में बरस रही है और मैं उसकी छत्र छाया के नीचे बैठी हुई हूँ और उस अनोखे आनंद का अनुभव कर रही हूँ। विचार कीजिए आपका क्राउन चक्र आपके ऊपरी भाग की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं, कमल की सहस्त्र पंखुड़ियां आशीर्वाद की इस वर्षा को प्राप्त करने के लिए खुल गई हैं। और अब चमकीली लाल रंग की किरणें आपके क्राउन चक्र से होते हुए मूलाधार या रूट चक्र में प्रवेश कर रही हैं। लाल रंग जो कि शक्ति का प्रतीक है आपकी अस्थियों एवं मांसपेशियों को मजबूत कर रही है और आप शक्तिशाली बन रहे हैं। हड्डियों व मांसपेशियों से संबंधित सर्व बीमारियों का परिमार्जन हो रहा है और आप बहुत शक्तिशाली आत्मा के रूप में उभर रहे हैं। चमकदार नारंगी रंग की किरणें आपके क्राउन चक्र में प्रवेश करके आपके निचले अंगों तक पहुंचकर अपने साथ पवित्रता ला रहे हैं और आपको इन अंगों से संबंधित सभी बीमारियों से मुक्ति दिला रहे हैं। चमकीली पीले रंग की किरणें जो कि आनंद एवं प्रसन्नता का प्रतीक है सहस्त्र चक्र में प्रवेश करके मणिपुर या नवल चक्र में पहुंच रहे हैं। आपके अंदर अप्रसन्नता का अंत हो रहा है और आपकी आंत एवं आपके पाचन तंत्र में प्रचुर मात्रा में आनंद एवं प्रसन्नता का समावेश हो रहा है और अप्रसन्नता के कारण सभी दुखों से मुक्ति मिल रही है और अब आप एक आनंदमय एवं प्रसन्न आत्मा के रूप में स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। चमकदार सुंदर दीप्तिमान नए हरे रंग की किरणें सहस्त्र चक्र से होते हुए आपके अनहद अर्थात हृदय चक्र में प्रवेश कर रहे हैं और आपके हृदय को प्रेम से भर रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम मात्र स्वयं के लिए नहीं अपितु सर्व मानवता के लिए है। विचार कीजिए कि चमकदार आनंद से भरपूर हरे रंग की किरणें आपके हृदय से निकलकर आपकी महाधमनी और रुधिर शिराओं में पहुंच रही है और तत्पश्चात सारे शरीर में फैल रही है। अब आप सभी घृणापूर्ण भावनाओं से मुक्त होकर एक प्रेममय आत्मा बन चुकी है। तेज चमकदार आसमानी रंग की किरणें आपके सहस्त्र चक्र से होते हुए विशुद्ध चक्र अर्थात थ्रोट चक्र में प्रवेश करके आपके फेफड़ों व श्वास नलिका को शांति से परिपूर्ण कर रही है और आपका सारा तनाव दूर हो रहा है। अब आप एक शांतिमय आत्मा स्वयं को महसूस कर रहे हैं। चमकदार नीले रंग की किरणें सहस्त्र चक्र से होते हुए आपकी समस्त मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रचुर ज्ञान एवं सत्य से भर रही हैं। विचार कीजिए कि आपके मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं सक्रिय हो गई हैं और आप एक सत्यनिष्ठ सुवसित एवं ज्ञानी आत्मा बन गए हैं और अंततः परमानंद स्वर्ग समान सुख की बैंगनी किरणों की आपके चारों ओर बरसात हो रही है। ये किरणें सहस्त्र चक्र में प्रवेश करके आपके भौतिक शरीर के चारों ओर रक्षा कवच का सृजन कर रही है और आपको परमानंद पूर्ण आत्मा बना रही है। आशीर्वाद की यह वर्षा आपके ऊपर इसीलिए हुई है जिससे कि आप इसे आगे बढ़ा सकें व समस्त सृष्टि मानवता के हित में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। अब आप एक शक्तिशाली पवित्र प्रसन्न चित्त प्रेममय शांतिमय सत्यनिष्ठ एवं परमानंद पूर्ण आत्मा है। एकदम धीरे धीरे सफेद रंग की समस्त ऊर्जा को स्वयं के शरीर में वापस आने दें। ऐसी ऊर्जा जिससे आपके अंदर इन अद्भुत गुणों का समावेश हो सके। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और आप स्वयं को एक नई दुनिया में आएंगे। ओम शांति शांति।
ओम शांति। आप सभी ने मेडिटेशन का अनुभव किया, देखा सभी ने? अगर आपने सही ढंग से किया होगा तो जरूर चार्ज हो गए, ऐसे सभी चार्ज हो गए क्योंकि वातावरण पूरा पूरा हॉल कॉस्मिक रेस से ईश्वरीय ऊर्जा से भरपूर हो गया है। इसमें जो भी व्यक्ति है वो सारे के सारे चार्ज हो चुके हैं, चाहे उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन करें जो किए होंगे उनमें बहुत ज्यादा ताकत आई होती, बहुत ज्यादा। पानी पीने की भी जरूरत नहीं है, यही है मेडिटेशन की पावर। अगर बिलीफ नहीं है तो आप में से आइए, मैं इधर चेक कर लेता हूं आपको हिला करके। कौन आना चाहेगा? आइए, जो भी जिसको भी चेक कराना आइए। सारे लोग नहीं, आप वहां पर बैठ के किसी और से भी चेक करा सकते हैं, है ना? थोड़े लोग नहीं तो पूरा स्टेज भर जाएगा। ठीक है, सभी लाइन लगा दीजिए, सभी लाइन लगा के ऐसे खड़े हो जाइए, सभी लाइन लगा के खड़े हो जाइए, ठीक है। पैर पैर सभी ज्वाइन कीजिए, पैर को सभी ज्वाइन कीजिए, सभी ठीक से ठीक सीधा लाइन में खड़े हो जाइए और पीछे हट जाइए सभी, और ऐसे सीधा स्ट्रेट खड़ा हो ये ऐसे पकड़ करके ऐसे, ठीक है। फील हो रहा है ताकत है? ये देखिए छोटा बच्चा भी देखे आपने, इसने मेडिटेशन किया या नहीं किया, देखिए सारे चार्ज हो गए है ना, ये छोटा भी चार्ज हो गया है, हैं? देखे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, दोनों पैर मिलाओ, थोड़ा ताकत लगाओ, तू तो नीचे झुक रहा है, ताकत लगाओ, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, देखिए देखिए देखा देखा फील कर रहे कि नहीं आप लोग, आप लोग फील कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, आप देखिए सारे चार्ज हो गए, आप देखिए पैर मिलाइए, पैर मिलाइए, हाँ
मेरा पूरा है कम,
आइए इधर आइए इधर
आइए, कम है कि ज्यादा,
कम है कि ज्यादा, आप तो चार्ज है, पूरा पैर मिलाइए, पैर मिलाइए, हाँ आप देखिए अब तो सबसे ज्यादा चार्ज है, ठीक है। आप देखिए आप लोगों ने फील किया कि नहीं करंट है, आप देखिए पैर मिलाइए, आप पैर मिलाइए, फील हुआ पावर का, पैर मिलाइए, ओके है? मेरे को साथ चल गया, हिलाते हिलाते बात तय कर रहे हैं, हाँ वो पैर मिलाइए, पैर मिलाइए, हाँ आप देखिए बिल्कुल आपको खुद लग रहा है,
ऐसे है कि एक साल से छोटे हुए,
हाँ मैं बताऊंगा आपको, आपको आप पैर मिलाइए, पैर मिलाइए, हाँ पूरा ताकत लगाइए, ठीक है। पैर मिलाइए,
अब पैर में फ्रैक्चर हो तो
कोई बात नहीं, तब भी ताकत आया होगा, आप देखिए पैर में फ्रैक्चर है तब भी ताकत है,
बता तो देना चाहिए,
है कि नहीं ताकत, आओ बेटे बेटी आ गई, इधर आओ जरा, चप्पल खोल के आओ, चप्पल खोल के आओ,
आप क्या नोटिस करते हैं,
है पावर है चार्ज है, चार्ज है, सभी चार्ज है, लेकिन ठीक है अभी अभी हम डिस्चार्ज करके किसी एक आदमी को डिस्चार्ज करते, सबको नहीं डिस्चार्ज करते, है आपको डिस्चार्ज, आप में सबसे ज्यादा ताकत है, ठीक है ओके। ये मोबाइल में आप मिस कॉल कीजिए, रॉन्ग नंबर कहेंगे ना, रॉन्ग नंबर,
रॉन्ग नंबर,
हाँ बस डिस्चार्ज नहीं इतना में डिस्चार्ज, आप लगाइए, आप पैर में लगाइए, ऐसे कीजिए, देखिए देखा फील किया कि नहीं किया आपने, तुरंत डिस्चार्ज हो गया, पावर खत्म हो गया, ये गुड़िया ये तो चार्ज है, पैर पैर मिलाओ बेटे,
सुपर चार्ज है,
पैर मिला, पैर मिलाओ, पैर मिलाओ, और ये हाँ देखिए सभी चार्ज इस रूम में जो भी है सभी चार्ज हो गए हैं, ये है इसलिए अभी देखिए ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, मेडिटेशन के इतना पावर है, अभी एक कोई कंपनी मैंने सुना है, कल संजय भाई बच्चा बता रहे थे कि कोई ब्रासलेट बेच रही है, वो ब्रासलेट का कीमत है करीब 12,000 रुपए के आसपास में, और वो बोलते हैं कि ब्रासलेट पहन लो तो मोबाइल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो 12,000 रुपए कौन खरीदेगा, 12,000 रुपए लो और उसको हमेशा ब्रासलेट को साथ में रखना पड़ेगा, लेकिन इसको तुरंत कनेक्ट कीजिए और चार्ज हो सकता ही नहीं हो सकता, आप बताइए, सारे पावरफुल हो सकते हैं, आपको फ्री में भगवान दे रहा है ताकत, फ्री में, आपको सिर्फ लेना लेने का तरीका आना चाहिए और सभी के सभी चार्ज हो जाएंगे, ये है मेडिटेशन की पावर, ये है योग का प्रयोग, ठीक है। तो सभी अपने लिए ताली बजाइए,
चार्ज है नहीं है, इसको चेक करो
ये, अच्छा ताकत लगाना बेटे। हाँ
देखिए, अभी चार्ज है, ये भी चार्ज है, चार्ज है पूरा,
है ना,
चार्ज
है, एक चार्ज। हाँ बिल्कुल। ओके, आप लोग जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैठिए आप लोग, मैं मिलूंगा आपसे, मिलूंगा इसके बाद। है मशीन से वो टेस्ट कर लेंगे बाद में। हाँ बैठ जाइए, मैं मिलूंगा आपसे। थैंक यू।
आप सभी दो मिनट बैठे रहेंगे, आपका वो चेकिंग जो है वो भी करेंगे, मगर पहले हम सेशन भी पूरा कर लें। अभी अभी कोई नहीं करेगा, अभी आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये तो एवर लास्टिंग प्रोसेस है, आप सभी को इस प्रकार की एनर्जी हमेशा के लिए अपने अंदर बना के रखनी है। यहाँ तो आप अपनी चेक करके प्रूफ करके जा रहे हैं, क्योंकि हम सब एडवोकेट्स हैं ना, तो एडवोकेट्स प्रूफ के ऊपर बिलीव करते हैं ना। तो आप सभी ने प्रूफ भी देख लिया कि जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, और वाकई में ये पावर हम अपने अंदर जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर सारे दिन अपने आप को मेडिटेशन में रखेंगे, तो सारे दिन हम ऐसे चार्ज रहेंगे, और जो स्थितियां और जो परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी वो सहज ही पार हो जाएंगी, और हम सदैव ही जीवन के अंदर सक्सेसफुल रहेंगे। तो इस प्रकार से अपने आप को सक्सेसफुल रखने के लिए ये मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। आप सभी के साथ साथ हम चंद्रशेखर भाई का विशेष धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने स्पेशली, हमने उनको एक ही बार फोन किया और उनसे कहा ऐसे ऐसे जूरिस्ट आ रहे हैं और आपका हम एक सेशन रखना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत एक सेकंड में हाँ कर दिया। ये भी नहीं सोचा रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लास्ट 11th लवर पे फोन करने, शायद मैंने उनको 18th या 19th को फोन किया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम में आपको बुलाना चाहते हैं, तो कहा मैं 23 तारीख को पहुंच जाऊंगा। तो एक सेकंड में उन्होंने हाँ किया। तो ये डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि हम अगर डिटरमाइंड होते हैं तो हम कोई भी कार्य सक्सेसफुली कर सकते हैं, कोई भी बाधाएं नहीं आती हैं। तो यही उन्होंने अभी हम सभी को बताया है कि जब हम हमारे माइंड के ऊपर इतना कंट्रोल रखते हैं तो माइंड अपने आप ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और वो हमारे लिए कार्य करता है, हमको नहीं करना पड़ता है, फिर हमको सोचने की भी जरूरत नहीं है। माइंड में एक बार आप अपनी फीडिंग दे दो, ये होना है, और माइंड ऑटोमेटिकली सारी व्यवस्था आपकी करके दे देता है। तो इस प्रकार से अपने माइंड को सदैव फीड रखें और वो आपके लिए कार्य करता ही रहेगा, मगर कौन सा माइंड करेगा, जब वो माइंड क्लीन क्लियर होगा तभी वो कार्य हो सकता है। और माइंड क्लीन और क्लियर कब होगा, जब वो परमात्मा के साथ कनेक्टेड होगा। तो इस प्रकार से अपने माइंड को कनेक्ट रखेंगे। फिर से एक बार हम चंद्रशेखर भाई का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमको प्रोसेस भी सिखा दिया कि किस प्रकार से हम अपने माइंड को कनेक्ट रखेंगे। आप सभी का भी बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आकर इस कला को भी सीखा और इस प्रोग्राम को भी सक्सेसफुल बनाया है। और यही आशा है, हम यही कहते हैं कि नॉट डिपार्चर बट फॉर द न्यू बिगनिंग। हम सब फिर से अपने अपने स्थानों पे जा रहे हैं, अपने स्थानों पर जाके इसका प्रयोग करके अनेकों को इसके बारे में मैसेज देने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ प्रैक्टिकल ये सब आप बताएंगे सभी को, और जब प्रैक्टिकल वो अनुभव करेंगे तभी मानेंगे कि हाँ, राजयोग द्वारा जीवन के अंदर परफेक्शन आ सकती है। तो आप सभी को, हम सभी से छुट्टी लेते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं। एक भाई की डायरी कहीं रह गई थी, अगर किसी को वो डायरी मिली हो, उन्होंने उसमें अपना एक्सपीरियंस भी लिखा है, गोरखपुर के कोई भाई हैं, अगर किसी को डायरी मिली है तो वो डायरी हमारे पास डिपॉजिट कर देंगे, तो हम उन भाई को वो डायरी, उन्होंने अपने क्लासेस के अनुभव लिखते गए हैं, जो भी क्लासेस हो रही थी उन्होंने मेन मेन पॉइंट्स लिखे हैं, तो अगर किसी को मिली है वो डायरी तो जमा कर देंगे। ओम शांति, गुड बाय फॉर न्यू बिगनिंग। ओम शांति।